الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. خلاصة تفسير میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی ایماندار مرد, ایماندار کا مطلب ایمان والا یعنی مومن, یہ ایک لفظ ہے جو کہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے جو دیانتدار یعنی سچ بولنے والا ہو اور امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو, تو اس کو ہم ایماندار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اس کو آپ ایماندار کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیانتداری ایمانداری ہی کا ایک جز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کا جو برعکس کہتے ہیں نا وہ بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم اپنے اسپیشلی پاکستانی لینگویج کے اندر, پاکستانی اردو میں, ہم کسی شخص کو جس میں ہم دیانتداری نہیں دیکھتے یا ہم معاملے کے اندر تھوڑا اس کا یعنی اونچ نیچ ہوتا ہے, تو ہم ایسے شخص کو پھر بے ایمان بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بے ایمان جو ہے نا یہ ہم پتہ نہیں کیا ہم نے ایک لفظ بنا لیا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الگ ہی لفظ ہے, حالانکہ یہ لفظ ہے کیا, بے ایمان. ٹھیک ہے, ایمان کے بغیر. تو بیسیکلی بے ایمان کہنا جو ہے اس کا مطلب کافر کہنا ہے کسی کو. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ جو ہے نا یہ ہمیں اپنی زبان میں سے, لینگویج میں سے نکال دینا چاہیے, بلکہ ضروری ہے نکال دینا کسی کو بے ایمان کہ یہ بس یہ شخص بڑا بے ایمان ہے, یار تم تو بڑے بے ایمان ہو, یہ کیا مطلب, تم تو بڑے کافر ہو. بھی آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں کوئی معمولی بات ہے, تو اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ کسی کو کافر کہہ دینا جو ہے وہ خود کو کافر بنا دینے کے کا موجب بن سکتا ہے. تو ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں, جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا, گو وہ دنیا ہی کی بات کیوں نہ ہو, وجوباً حکم دے دیں. اگر دنیا کے معاملے میں بھی وہ ایسا حکم دے دینا کہ جو کہ یعنی بڑا تاکیدی حکم ہو, تو ایون اس میں بھی وہ پھر ہمارا اختیار نہیں رہ جاتا. تو پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے, یعنی اس اختیار کی گنجائش نہیں رہتی کہ خواہ کریں یا نہ کریں, بلکہ عمل ہی کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر نہیں کریں گے تو پھر سزا ملے گی. اور جو شخص بعد حکم وجوبی کے اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ سری گمراہی میں پڑا. اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ, تو یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول کسی کو کہہ دیں کہ جی تم اس جگہ شادی کرو, ٹھیک ہے, تو یہ شادی کرنا جو ہے یہ ایک بظاہر دنیاوی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی پھر اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اگر وجوباً کہہ دیں. تو یہ اس کی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کا اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا. اور اس وقت یاد کیجئے کہ جب آپ فہمائش و مشورے کے طور سے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجوباً نہیں کہہ رہے تھے بلکہ مشورے کے طور پر یا فہمائش جس کو کہتے ہیں کے طور پر کہہ رہے تھے, اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا کہ اسلام کی توفیق دی, جو انعام دینی ہے, یعنی دینی انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کہ اسلام کی توفیق دی. اور اچھا, اور غلامی سے چھڑایا کہ نعمت دنیاویہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے غلامی سے چھڑانے کی بھی نعمت دی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو آزاد کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا یعنی تعلیم دین فرمائی. زید جو ہے نبی علیہ السلام کے بیٹے بن کر کے رہے, زید بن محمد, کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا, نبی علیہ السلام کو اختیار کر لیا تھا, تو اس پر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے زید کو زید بن محمد کے آج سے یہ میرا بیٹا ہے. ठीक है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दीन फरमाई, आज़ाद किया और खुफी जात बहन से निकाह तक कर दिया। मुराद हजरत जैद रज़ी अल्लाह अन्हु है कि आप उनको समझा रहे थे, यानी समझा रहे थे कि अपनी बीवी जैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी जौजियत में रहने दे और इसकी मामूली खताओं पर नजर ना कर कि गाहे इससे नामवाफिकत हो जाती है। तो जैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थी, यानी बाप की बहन। ठीक है, बाप के भाइयों का तो तस्करा हम सुनते हैं, बल्कि फूफी का भी तस्करा सुनते हैं, हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, तो ये गालिबन उनकी बेटी थी या किसी दूसरी फूफी की बेटी थी, ये मेरे जहन में नहीं है। खैर, नबी रसूल सलाम के चचा भी थे, कितने थे, 11 चचा थे ना, या 10 चचा थे, और फूफियाँ भी थी। तो ये एक फूफी की बेटी थी, हजरत जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा को इनका नाम है। तो इनका जरा थोड़ा सा मिजाज था, जरा गुस्से वाला, और जुबान थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करती थी। तो ये इनकी खताएं थी, इनकी यानी गलतियां थी कि ये इस गुस्से का मामला और जुबान का इस्तेमाल ज्यादा करती थी। ठीक है, तो जैद रदान को नबी सल्लम समझाते थे कि भाई बीवी है और उसकी इन खताओं के ऊपर नजर ना करो, बल्कि इसकी पॉजिटिव चीजों को की तरफ देखो। अगर नेगेटिव चीजों की तरफ देखोगे, फोकस करोगे, तो फिर नामवाफत पैदा हो जाएगी। जैसा कि एक शेख जो है वो जब भी कोई अजवाजी ताल्लुकात में मसला लेकर के आता है, तो मशायख भी इसी तरीके से समझाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के शेख थे, ऐसे ही समझाते थे। और खुदा से डरो कि इसके हुकूक में भी कोताही ना करो, कि हुकूक में कोताही करने से भी नामवाफकत पैदा हो जाती है। बीवी के हुकूक जो हैं, तो अगरचे कि बीवी अपने हुकूक यानी शोहर के हुकूक मुकम्मल पूरे नहीं भी कर रही हो, फिर भी जो समझाने वाला होता है वो ये समझाता है कि भाई तुम अपने हुकूक को छोड़ दो, उनकी तरफ उनकी फिक्र ना करो, लेकिन दूसरे के हुकूक की तुम फिर भी फिक्र करो। यही समझाने का अंदाज होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। और फिर क्या हुआ कि जब शिकायतें हद से मुतजावज हो गई, यानी बहुत ज्यादा शिकायतें बढ़ गई, यानी मामला नहीं चल सका, और कराइन से इस्लाह और तौफीक की और तवाफुक यानी मवाफिकत की उम्मीद ना रही, यानी आसार ऐसे नजर आने शुरू हो गए, कराइन जिनको कहते हैं ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स या जाहिरी अहवाल वगैरह, ये ऐसे नजर आने शुरू हो गए कि अब उम्मीद नहीं है बेहतरी की, इस्लाह और तवाफुक की उम्मीद ना रही। तो देखें, ये मामला जो है वो एक तो घर में जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये जैसे आप सुन चुकी होंगी यकीनन सारिस के बयान में भी और दूसरे बयान में भी, हजरत के भी और दूसरे, कि ये हर जगह होता है। ठीक है, हर घर में ऐसा होता है, और हम समझते हैं कि जी सिर्फ गुनाहगार घरों में ऐसा होता है, गुनाहगार घरों में तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वहां पर तो यानी दूसरी में वहां पे असल में ना जो गुनाहगार घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी नौयत बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मियाँ बीवी के अंदर, ये दीनदार घरों की बात हो रही है, दीनदार घरों में भी हो जाते हैं। और सबसे बेहतरीन दीनदार घरों में भाई जैद रदान का जो घराना था वो नबी अलैहिस्सलाम का करीब तरीन घराना था, अपना जैसे यानी अपना गोद में पला हुआ बच्चा, राइट, और जिसकी खुद तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, वो और नबी अलैहिस्सलाम की कितनी करीबी कजन फूफीजाद बहन कुरैश में से भी हैं और मुसलमान यानी ईमान भी लेकर के आई, जाहिर शुरू के लोगों में से थी ना जो, तो शुरू में ईमान लेकर के आई होंगी, मक्का मुकरमा की जिंदगी भी उन्होंने देखी होगी जिसमें के मुजाहिदों और कुर्बानियों वाली जिंदगी थी, तो ऐसी थी वो। लेकिन शोहर और बीवी का ताल्लुक एक ऐसा ताल्लुक होता है कि जिसके अंदर एक बड़ा ही अजीब किस्म की इक्वेशन होती है। तो इसमें नॉर्मली तो इख्तलाफ चलता रहता है, लेकिन कभी ये इख्तलाफ जो है वो इवन बेहतरीन घरानों में भी बढ़ जाता है, हत्ता कि तलाक की नौबत आ जाती है। तो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त फहमाइश के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में वो बात भी छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह ताला आखिर में जाहिर करने वाला था, यानी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता तो दिया था कि जी ऐसा ऐसा होगा कि जैद इसको तलाक दे देंगे और आपका फिर इनके साथ निकाह होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गई थी ये बात, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इजहार नहीं कर रहे थे। ठीक है, हत्ता के आखिर में अल्लाह ही ने इसका इजहार कर दिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आखिर में जाहिर करने वाला था, भाई कुरान की आयत उतार दी, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत को तो नहीं छुपा सकते, अपने दिल की बात को तो छुपा सकते हैं, कुरान की आयत को तो नहीं छुपा सकते ना। मुराद इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह है हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जबकि जैद अल्लाह ताला उनको तलाक दे दें, जिसको हफ्ता ताला ने जवज ना का कि हमने निकाह में दिया तुझको जजवा, यानी तुझको उसके, यानी निकाह कर दिया हमने तुम्हारा उसके साथ, ठीक है, तेरा उसके साथ। का की जमीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और हा की जमीर हजरत ज़ैनब अन्हा की तरफ। में कौलन और खुद निकाह कर देने से फ़ेलन जाहिर फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने निकाह कर दिया आसमानों पर निकाह, जब भी ज़ैनब ताला का निकाह जो है वो जमीन पर नहीं हुआ था, ठीक है, वो आसमान पर हो गया, अल्लाह ताला ने कर दिया। अब देखें जरा, यानी बात करते हैं ना कि जी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और एक्सेप्शन, तो भाई देखें यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है। नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ ही नहीं दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर निकाह का तरीका होता है कबिल तू और आप इनको अपने निकाह में कबूल करते हैं नहीं करते हैं, ये सारा कुछ नहीं हुआ था जनाब बताने के साथ, ठीक है। तो क्या मुसलमानों के लिए ये इम्तिहान था, राइट, इम्तिहान ही था ना कि भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया कि भाई मेरा निकाह अल्लाह ताला ने कर लिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो नहीं आकर के फरमाया कि हाँ जी इनका निकाह हो गया ऊपर, या राइट, या किसी और इस किस्म की कोई माफोकुल फितरत, कोई करामत तो, कोई मुआजा तो जाहिर नहीं हुआ कि जी इनका निकाह ऊपर हो चुका है, आप लोग तसल्ली रखें। सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम की जुबान के ऊपर एतमाद, राइट, सब कुछ आप के ऊपर एतमाद, सादिक और बमी और अमीन। भाई जब एक दफा सादिक मान लिया, अब वो जैसी भी बात कहेंगे वो सच्ची होगी, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक अन्हों को सिद्दीक का लकब क्यों मिला था जी, किसी को पता है, याद है किसी को सिद्दीक का लकब क्यों मिला था अबू बकर सिद्दीक रहता है उनको? जी किस बात पर सिद्दीक का लकब मिला था, क्या वाकया था? जिसकी इन्होंने तस्दीक करी थी मेराज के वाकये की, ठीक है, माशाल्लाह सही है। तो मेराज का वाकया क्या था कि भाई मैं रात को उठा, एक फरिश्ता आया और उसने एक घोड़े पे बिठाया और घोड़ा जो है वो ऐसे दौड़ता था कि एक उसकी जो छलांग होती थी वो ताहद निगाह जाती थी, और वो मुझे बैतुल मुकद्दस लेकर के चला गया, और वहां से फिर जो है वो मैं ऊपर चला गया, और ऊपर जाकर के मैंने ये देखा और जन्नत देखी जहन्नम देखी, ये किया वो किया सारा, राइट। तो ऐसी माफोकुल फितरत, यानी फितरत से ऊंची चीज जो कि दिमाग में नहीं आती, अकल में नहीं आती, राइट, तो वो उसको सुन करके इवन जो कुछ नए लोग मुसलमान हो गए थे उस वक्त वो मुर्तद हो गए थे, मुर्तद, राइट। और अबू जहल को ये उम्मीद लग गई थी कि ये एक ऐसी बात है कि जिसको सुन करके अबू बकर भी नबी अलैहिस्सलाम से मुखालफत करेंगे कि भाई ये कहाँ की लेकर के आए, ये कैसी लेकर के आए, राइट। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया, अगर ये बात उन्होंने कही है तो सच्ची है, ठीक है ना, अगर तुम अपनी तरफ से मना रहे हो तो फिर मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर उन्होंने कही है तो सच्ची है, जो कहें सच है, ठीक है ना। वो हवा के घोड़े पर उड़ करके चले जाएं कि जो है वो फरिश्ता आ जाए कि वो जो है वो आसमान जमीन पर, यानी जमीन आसमान पर उठाने, ये जो कुछ भी बोले सब सच है, ठीक है। तो ये इम्तिहान था जिसमें बहुत सारे लोग फेल भी हो गए थे, जब भी वो मुर्तद हो गए थे, लेकिन जो पक्के मोमिन थे उनमें से कोई भी मुर्तद नहीं हुआ। तो उसी तरीके से ये भी तो इस तरह का ही है ना कि भाई हर इंसान को, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम के भी निकाह होते, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के साथ निकाह हुआ, आयशा रज़ी अल्लाह तआला के साथ निकाह हुआ, सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ निकाह हुआ, हफ्जा रज़ी अल्लाह तआला के साथ निकाह हुआ, और ये ज़ैनब बिन्त जहश इनके साथ जो है वो सारा मामला ही नहीं हुआ, ऊपर निकाह हो गया, ज़वजना कहा, बस ये एक लफ्ज काफी है, और मुसलमानों ने इसके ऊपर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ, राइट। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी आजमाइशें आती हैं, तो इस दौर में भी आजमाइशें आती हैं, लेकिन इस दौर में आजमाइशें जो है वो शरीयत के दायरे के अंदर आती हैं, ठीक है ना। ये जो वक्त था इसमें तो शरीयत डिफाइन हो रही थी, नबी अलैहिस्सलाम तो शरीयत डिफाइन कर रहे थे अल्लाह ताला के हुक्म से, तो उस वक्त ये आजमाइशें ऐसी आजमाइशें थी बिल्कुल ही अजीब व गरीब किस्म की, जो कि उस दौर के हिसाब से अजीब व गरीब थी।
आज की जो आजमाइशें होती हैं वो आज के दौर के हिसाब से अजीबोगरीब होती है, ठीक है, लेकिन वो आजमाइशें होती ही उस वक्त हैं क्योंकि वो आसानी से समझ में नहीं आती, ठीक है, उनके लिए जरा तहम्मुल मिजाजी की जरूरत पड़ती है, जरा जो है वो अपने ईमान को टटोलना पड़ता है, जरा जो है वो तवक्कुफ करना पड़ता है कि जी डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, ठीक है ना, बल्कि जरा सोचें कि भाई हमने ये मामला करा है तो क्यों करा है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल जो कि वैसे इससे ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन इससे ये बात समझ में आएगी कि मकसद की तरफ देखना पड़ता है, ठीक है, मकसद की तरफ देखना पड़ता है, असल की तरफ देखना पड़ता है, तभी जाकर के इंसान जो है ना वो सही फैसला कर पाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका यूरोप से कुछ लोग सऊदी अरब आते हैं, ठीक है ना, जॉब करने के लिए सऊदी अरब आते हैं। क्यों क्यों आते हैं सऊदी अरब? अमेरिका में बड़ी अच्छी जॉब होती है, बड़ा अच्छा उनका जो है वो उनके लज्जतें पूरी हो रही होती हैं। सऊदी अरब क्यों आते हैं? जी मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर जो है वो रियाज में भी रहेंगे तो मस्जिद की अजान मिलेगी, राइट, और जो है वो मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा जाना आसान हो जाएगा, राइट, तो हज करेंगे, उमरे करेंगे, ज्यारतें करेंगे नबी अलैहि सलाम के रोजे की, ठीक है। अब जब वो यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पे आकर के जब वो जॉब मार्केट वो वर्क प्लेस में जाते हैं तो उनको बे इंतहा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में जो माहौल होता है, जॉब एनवायरमेंट होती है, वो यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर जो है वो अरबों का दिमाग ही जो है वो ऐसा यानी खराब हुआ हुआ होता है, खुसूसन ऑफिस के अंदर जो जो सऊदीज होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो है डील करना इतना मुश्किल काम हो जाता है, हर जगह प्रॉब्लम्स है, वो यानी पासपोर्ट्स में और इकामे में पता नहीं क्या क्या इकामा नहीं बन के दे रहे हैं, इकामे में प्रॉब्लम्स आ रही है, फैमिली को लाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, फलानी प्रॉब्लम्स आ रही है, 10,000 किस्म की प्रॉब्लम आती है, राइट। तो ऐसे मौके पर ना बहुत सारे लोग फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी होती है कि वो मशवरा कर लें, ठीक है ना, तो जब वो मशवरा करते हैं, कुछ लोग तो आने से पहले भी मशवरा करते हैं और कुछ लोग जो है जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब मशवरा करते हैं, तो हम उनको क्या समझाते हैं? हम उनसे पूछते हैं, भाई आप ये बताएं कि आप क्यों आए थे, आपका आने का मकसद क्या था? तो अब वो कहते हैं, जो जो दीनदार होते हैं वो दीनदारी की वजह से आए होते हैं ना, तो अब वो कहते हैं कि जी हम तो मक्का मुकरमा की वजह से आए थे, मदीना मुनव्वरा की वजह से आए थे, और अजान की आवाज सुनने की वजह से आए थे, और मुसलमानों का एक मुआशरा हुआ उसकी वजह से आए थे। तो हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई आपको ये सारी चीजें क्या नहीं मिल रही हैं? आपको मिल रही हैं ना? कहते हैं हाँ मिल रही हैं। तो फिर आप इन इन मसलों की तरफ क्यों गौर कर रहे हैं? आप इन मसलों के अंदर क्यों पड़े हुए हैं? आप छोड़ें, जिस मकसद से आए थे वो मकसद तो पूरा हो रहा है ना, बाकी आपको हर चीज के लिए प्राइस तो पे करनी पड़ती है ना। देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो जो आपको मसाइल और मुश्किलात पेश आ रही हैं, ये कीमत है उस उन नेमतों की, जो नेमतें आपको यहीं मिल रही हैं वहां नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तो असल मकसद की तरफ जब निगाह करते हैं ना तो आजमाइश आसान हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह वालों के साथ जब इंसान मामला करता है ना तो अल्लाह ताला शुरू में तो नहीं आजमाते, शुरू में तो दूसरे तरह की छोटी छोटी आजमाइशें आती हैं, लेकिन ऐसा वक्त भी आता है कि अल्लाह वालों के मामले में ही आजमा लेते हैं, तो उस वक्त फिर अपने मकसद की तरफ निगाह करनी होती है कि भाई इनके साथ जो मैंने ताल्लुक जोड़ा था इसका मकसद क्या था, क्या वो मेरा मकसद फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मकसद फुलफिल हो रहा है तो फिर आप इन आजमाइशों आप इन प्रॉब्लम्स की तरफ निगाह ना करें, ठीक है ना। आप ये देखें कि क्या इन्होंने मुझे अल्लाह का डर दिखाया है, क्या इनकी वजह से मेरी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई है, मैंने गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दिया है, मैंने नेकी तकवा तहारत वाली जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस करी है। हाँ, पक्का कामिल मोमिन या औलिया अल्लाह के दर्जे में फाइज तो नहीं हुआ, लेकिन तब्दीली तो आई है ना मेरी जिंदगी में, बेहतरी तो आई है ना मेरी जिंदगी के अंदर, कितने ऐसे गुनाह थे, कितने ऐसी गलतियां थी जो कि मैं कर रहा था या कर रही थी, वो सारी छूट गई है मेरी जिंदगी में, ठीक है ना। तो यही तो मकसद था, ये मकसद तो पूरा हो रहा है ना। तो अब आप जो है वो इन छोटी छोटी चीजों की तरफ या ऐसी चीजें भी जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, आप उनकी तरफ मत नजर करें, ठीक है, बल्कि आप बिग पिक्चर को देखें, असल मकसद जो आपका था उसको देखें। तो असल मकसद की जब इंसान देखता है तो उसके लिए आजमाइशें आसान हो जाती हैं, और जो लोग असल मकसद की तरफ नहीं देखते और जो है वो इन निटी ग्रिटीज के अंदर या इस तरह की चीजों के अंदर फंस जाते हैं तो फिर वो वापस लौट जाते हैं, जैसे कि उस वक्त भी लोग वापस लौट गए थे। मुर्तद का मतलब क्या होता है? वापस लौट जाने वाला, ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं और इनका तरीका ये है कि बिग पिक्चर की तरफ देखा जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये जो मामला था ना। ये भी एक बड़ी आजमाइश थी मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला ने ऊपर ही निकाह कर दिया जी, और यहाँ पर मामले डिफरेंट हो, बस घर में आके रहना शुरू हो जाओ खत्म। तो फरमाया कि इस मशरूत और मुअल्लक इरादे के साथ ही आप लोगों के तान से भी अंदेशा करते थे, भाई लोगों ने जो कि कमजोर ईमान वाले लोग होते हैं या जो मुखालिफिन होते हैं, तो उन्होंने तो फिर ताने देने होते हैं ना, जैसे कि आज ताने दे रहे हैं वैसे ही उस वक्त भी ताने देने होते थे। तो अगर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अंदेशा करते थे। अच्छा, अल्लाह ताला शेख तो थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख के साथ ताल्लुक तो बनाया हुआ था, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाया हुआ था, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये तबी कैफियात आती थी। लेकिन शेख जो है वो समझा देते थे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज के दौर में जो सालिक होता है उसके ऊपर तभी कैफियत आती हैं, जब घर वाले बुरा भला कहते हैं और उधर से ससुराल की तरफ से मुश्किल मिलती हैं या शौहर की तरफ से मुश्किल मिलती हैं, कहीं और से मुश्किल मिलती हैं, तो इंसान के ऊपर तभी कैफियत आती हैं। लेकिन अगर वो ताल्लुक बना के रखता है मशवरे वाला है, अगर आगे से बात कर लेता है, पूछ लेता है, तो समझा दिया जाता है, याद दहानी करा दी जाती है, बिग पिक्चर की तरफ जो है वो नजर करवा दी जाती है, तब वो आसान हो जाता है मसला। सिंपल यही इक्वेशन है, ठीक है। टोटल हमारा दीन जो है ना वो यही है असल में, ठीक है। तो नबी सल्लम के साथ भी ऐसा होता था, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, होता रहता है इस तरह का। तो फरमाया कि आप लोगों के तान से भी अंदेशा करते थे, क्योंकि इस वक्त इस निकाह में किसी अहमियत अहम मसलहत दीनिया का होना जहन मुबारक में ना आया होगा। भाई इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान तो थे ना, तो हर वक्त इंसान के जहन में तो इस तरह चीजें नहीं आ सकती ना, जिस तरह अल्लाह ताला को हर चीज जो है वो मालूम होती है। अलीमुन खबीर तो अल्लाह ताला है ना, नबी तो नहीं होता अलीमुन खबीर। महज दुनियावी मसलहत खास हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की ख्याल में होगी कि भाई जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो तलाकशुदा हो जाएंगी और फिर उनका क्या बनेगा वगैरह, तो इस तरह के ख्याल होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में। और उमूर दी दुनियाविया में ऐसा अंदेशा होना मुज़ायका नहीं है, भाई इस तरह से सोचना चाहिए आपको, ये तो कोई गलत बात नहीं थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे, बल्कि बास हैसियतों से मतलूब है, जबकि एतराज से दूसरों के दीन की खराबी का एहतमाल हो और उनको इससे बचाना मकसूद हो। ऐसा भी तो होता है ना कि जी अगर मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, लोग एतराज करेंगे तो लोगों का कहीं दीन खराब ना हो जाए, और नबी पर एतराज करने से तो इंसान काफिर हो जाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी भी फिक्र, ठीक है। और डरना तो आपको खुदा ही से ज्यादा सजावार है, यानी लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई बेशक तुम अपनी तरफ से ये फिक्रें कर लो, लोगों के ईमान की भी फिक्र कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि हिदायत मेरे हाथ में है, ठीक है। तो मैं जो तुम्हें कह रहा हूं ना करना तुमने वही है, ठीक है। तो तुम्हें अगर डरना चाहिए, तुम्हें अल्लाह ताला से ज्यादा डरना चाहिए, अल्लाह ताला याद दहानी करो फरमा रहे हैं, ठीक है। फरमाया कि यानी चूंकि वाकई में इसमें दीनी मसलहत है, इसमें दीनी मसलहत है, जैसे कि आगे लिखे ला यकुना में मजकूर है, इसलिए खल्क से अंदेशा ना कीजिए, चुनाचे बाद इत्तलाए मसलहत दीनिया के फिर अंदेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, और इरादा निकाह में तो क्या अंदेशा होता, खुद निकाह के बाद भी अंदेशा नहीं किया, जिसका किस्सा आगे है। यानी जब अल्लाह ताला ने एक बात कह दी कि नहीं जी दीनी मसलहत जो है ना वो इसी में है कि जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से तुम्हारा निकाह हो, तो उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात मान ली और फिर जो है वो अंदेशे निकल गए जहन से, ठीक है। जब इस कहते हैं ना कि जब आप शेख से मशवरा करते हैं ना, तो मशवरा करने से पहले आपको सोचना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये मामला जो है ना वो मशवरा करने की का मामला है कि नहीं है, ठीक है, मशवरा करने की जरूरत है, या हो सकता है शेख ने पहले ही मुझे कोई बात कही भी हो, मैं अगर उस बात के ऊपर अमल कर लूंगी तो मसला हल हो जाएगा, तो अभी मुझे हर हर चीज के लिए मशवरा करने की जरूरत नहीं है, इस मामले में अभी मशवरा के बगैर ही काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यानी मशवरा करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है, कि मशवरा करूं या ना करूं। लेकिन जब मशवरा कर लिया ना, तो मशवरा करने के बाद क्या करना चाहिए, कोई कोई बताएगा, मशवरा करने के बाद क्या करना चाहिए। भाई शेख से मशवरा कर लिया, शेख ने आपको कोई मशवरा दे दिया, अब सालिक का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ठीक है, जरा आप लोग बताएं, क्योंकि पिछले दिनों किसी ने मशवरा किया, ठीक है ना, अब उनको एक मशवरा दे दिया, हुक्म तो जाहिर नहीं दिया, ठीक है, वजूब के दर्जे में हुक्म तो नहीं दिया लेकिन मशवरा दिया, लेकिन आगे से उन खातून ने जवाब क्या दिया, बड़े मजे का जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, मैं सोचूंगी, राइट, मैं सोचूंगी। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई आपने इस्लाही ताल्लुक बनाया, इस वजह से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये जो जवाब है ना, मैं सोचूंगी, ये मुनासिब जवाब नहीं है। ठीक है, अमल करना चाहिए, नहीं ये भी सही जवाब नहीं है, अमल करना चाहिए ये भी ठीक जवाब नहीं है, बिकॉज अमल करना हर एक के बस में नहीं होता। मशवरा ले लेना एक इबादत है, ठीक है ना, मशवरा करना सुन्नत है, और सुन्नत जो है वो इबादत के दर्जे में होती है। ठीक है, लेकिन अमल करना ये मुमकिन नहीं होता हर एक के लिए, तो इस वजह से आपका जवाब भी सही नहीं है। सही जवाब दे जी, मशवरा जब ले लिया आपने तो फिर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? सोचूंगी वाला रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, अमल करना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है हर एक के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये जवाब भी ठीक नहीं है। तो सही जवाब ये है कि भाई अमल करने की नियत करनी चाहिए, अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये है, ठीक है, मशवरे के बाद अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, या ये कि उनको बता दें कि जी मेरे लिए इस पर अमल करना मुश्किल है या मुमकिन नहीं है, ये बता दें। ओके, मेरे लिए इस पर अमल करना मुश्किल है या मुमकिन नहीं है, या ये कि अगर अपनी तरफ से कोई और जहन में बात आ रही है तो ये बात सामने पेश कर दें, ये भी कोई बुरा नहीं है कि आपको मशवरा कुछ दिया गया है, लेकिन आप आगे से अगर आपके जहन में कोई हो सकता है, कहीं और से कोई और आपके जहन में बात आई भी हो जो कि ज्यादा आपके अहवाल के हिसाब से मुनासिब लग रही हो आपको, तो आप वो चीज भी सामने रख दें। ठीक है ना, तो ये इसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह से जो कहना कि जी मैं सोचूंगी, आई विल थिंक अबाउट इट, ये जो है ना, ये बहुत ही जिसको इस्तेगना वाला वाला रिस्पॉन्स, बस जी जो भी आपने कह दिया लेकिन फैसला तो मैंने यानी अपने नफ्स से ही पूछ करके करना है, तो मैं सोचूंगी का क्या मतलब है ये आपका? ठीक है, किससे? इसलिए कि जब इंसान मशवरा मिलने के बाद सोचेगा तो फिर क्या होगा, शैतान ने वसवसे डालने, ठीक है ना, शैतान ने जो है ना फिर वो यानी आपको ऐसे रहने नहीं देना है, बल्कि वसवसों से आपके ऊपर हमला कर देना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत रिस्पॉन्स है। अलबत्ता ये बेहतर रिस्पॉन्स है कि हाँ ठीक है, मैं जो हूँ वो अमल करने की कोशिश करती हूँ, या ये कि मैं ठीक है मैं देख इस्तखारा करना, ये भी जो है वो क्या, और उमूमन जो है ना इस तरह के मामलों में जब मशवरा दिया जाता है तो साथ साथ ये भी किया जाता है, कहा जाता है कि जी आप इस्तखारा भी कर दें। ठीक है, अल्लाह ताला से भी आप जो है वो खैर की तलब जारी रखें, अलबत्ता हमारा मशवरा ये है कि आप ऐसे काम करें। इसके आगे फरमाते हैं कि चूंकि वाकई में इसमें दीनी मसले है, जैसे कि आगे लिखा ही लाजकूनु अलख में मशहूर है, इसलिए खल्क से अंदेशा ना कीजिए, चुनाचे बाद इत्तलाए मसलहत दीनिया के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदेशा नहीं किया, और इरादा निकाह में तो क्या अंदेशा होता, खुद निकाह के बाद भी अंदेशा नहीं किया, जिसका किस्सा आगे है कि फिर जब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का उस यानी ज़ैनब जी भर गया, यानी तलाक दे दी और इद्दत भी गुजर गई। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, ये मजाज है इससे के यानी तलाक दे दी और इद्दत भी गुजर गई। ठीक है, तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका निकाह कर दिया ताकि मुसलमानों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के निकाह के बारे में कुछ तंगी ना रहे, जब वो मुंह बोले बेटे उनसे अपना जी भर चुके यानी तलाक दे दें और इद्दत पूरी कर लें। मतलब ये कि इस तशरी का इजहार मकसूद था और खुदा का ये हुक्म तो होने वाला था, यानी ये मामला ऐसा था कि जिसके अंदर के अल्लाह ताला की हिकमत में ये बात थी कि इस मामले को ना बाकायदा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिनमें कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हर मामले में नहीं हुई, थ्योरेटिकली अहकाम भी आए, ठीक है, लेकिन कुछ मामलात इतने स्ट्रॉन्ग थे उस माशरे के अंदर कि उनको ख़त्म करने के लिए बाकायदा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट कर ली थी। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह से अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल भी सेट करवाई। तो फरमाया कि मतलब ये कि इस तशरी का इजहार मकसूद था, यानी जो शरीयत का अहकाम आया, तशरी का मतलब शरीयत का जो अहकाम आया इसका इजहार मकसूद था, और खुदा का ये हुक्म तो होने वाला था ही, क्योंकि हिकमत उसको मुक्तजा थी। आगे तार के यानी अल्लाह ताला का जो हुक्म होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि जी वो हुक्म पूरा ना हो, अगर इंसान खुद पूरा कर दे तो उसमें इंसान का फायदा होता है, لیکن اگر انسان پورا نہ بھی کرے تو اللہ کا حکم تو پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نوز ہاؤ ٹو امپلیمنٹ ہز احکام. آگے تان کا جواب ہے کہ ان پیغمبر کے لیے خدا تعالیٰ نے جو بات تکویناً یا تشریعاً مقرر کر دی تھی اس میں نبی پر کوئی الزام اور تان کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے نفس کی وجہ سے ایسا کیا. تان کب ہوتا ہے کہ جی یہ تو اپنی خواہشات کی وجہ سے کر رہے ہیں, یہ تو اپنے نفس کی وجہ سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے مزے کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو یہ تان کا ریزن ہوتا ہے. لیکن بھائی آپ نے جب کسی کو نبی مانا ہے, ٹھیک ہے, تو جب آپ نے کبھی کسی کو نبی مان لیا ہے تو یہ ماننا ہی اس بات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے حکم کو انسانوں کو بتاتے ہیں. یہ نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور نفس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے, یہ اللہ کے حکم کے مطابق گائیڈ کر رہے ہیں. تو نفس پرستی تو ان کے یہاں نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ نبی پر کوئی الزام اور تان کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ یعنی جس نے نبی مانا ہے تو وہ اس بات کو یاد کرے کہ بھائی نبی تم نے مانا کیوں ہے, اللہ کا حکم کو کرنے والا یہ بندہ ہے نا. تو اس کے اوپر ایک مثال یاد آئی کہ پچھلے دنوں کسی نے کسی شیخ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جی یہ جو شیخ ہیں یہ مریدوں کو تو تقلید کی تعلیم دیتے ہیں لیکن خود جو ہے نا وہ تقلید نہیں کرتے, بلکہ خود جو ہے وہ کسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے لیتے ہیں اور کسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل کا قول لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مریدوں کو اگر تقلید شخصی کی تلقین کر رہے ہیں خودبین کو تقلید شخصی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اوپر کیا جواب دیں گے, اس کے اوپر یہی جواب دیں گے کہ بھئی تقلید شخصی یعنی صرف امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ عمل کرو, امام شافعی کے مذہب سے یہ نہیں کرو کہ پک اینڈ چوز, جب میرا دل چاہے گا میں شافعی مذہب سے کوئی حکم دے دوں گا, جب میرا دل چاہے گا میں حنبلی مذہب سے کوئی حکم دے دوں گا, جب میرا دل چاہے گا میں مالکی مذہب سے کوئی حکم دے دوں گا. یہ کہلاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تقلید شخصی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تقلید شخصی مطلب ایک امام کو فالو نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں, بیکاز یہ جو کام کرتا ہے نا بندہ یہ صرف نفس پرستی کی وجہ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو جہاں پر جو حکم اپنے نفس کے مطابق نظر آتا ہے وہ وہاں سے وہ حکم لے لیتا ہے, اس کو نفس پرستی کہتے ہیں. اور یہ منع کیوں ہے, یہ منع صرف نفس پرستی کی وجہ سے منع ہے. ٹھیک ہے نا, امام شافعی نے غلط حکم لگایا, امام مالک نے غلط حکم لگایا ہے, ان کا جو فیصلہ ہے ان کی جج جو ہے وہ غلط ہے, خلاف شریعت ہے, ہرگز نہیں, ہرگز اس وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی صحیح ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی صحیح ہیں. ٹھیک ہے, اصح اور صحیح خلاف شریعت تو بات انہوں نے نہیں کری ہے. ٹھیک ہے, تو پھر عوام کو منع کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ صرف امام ابو حنیفہ کو فالو کریں, یا جو شواف ہیں ان کو کہا جاتا ہے آپ صرف امام شافعی کو فالو کریں, صرف اور صرف نفس پرستی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ اس طریقے سے پک اینڈ چوز کریں گے تو یہ پک اینڈ چوز کرنا جو ہے نا وہ آپ کا نفس کی وجہ سے ہوگا. لیکن اگر کوئی بہت بڑا شیخ اکابر علماء میں سے, ٹھیک ہے نا, وہ اگر یہ پک اینڈ چوز کر رہا ہے تو بھائی اس کو آپ اس یعنی اس چیز میں مقید نہیں کر سکتے. کیوں, اس لیے کہ آپ نے جس شخص کو اپنا شیخ بنایا ہے تو اس کو اگر آپ نفس پرست سمجھتے ہیں تو آپ نے اس کو اپنا شیخ بنایا کیوں, رائٹ right? اگر آپ اس کو نفس پرست سمجھتے ہیں تو آپ نے اس کو اپنا شیخ بنایا کیوں, آپ کو تو اس کو اپنا شیخ نہیں بنانا چاہیے تھا کیونکہ وہ نفس پرست آدمی ہے. تو اگر وہ نفس پرست نہیں ہے جس وجہ سے کہ آپ نے اس کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا, اگر وہ نفس پرست نہیں ہے تو اب وہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے جو کہ آپ کو نہیں معلوم کس وجہ سے, اگر وہ کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی بجائے امام شافعی کا قول لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ وہ نفس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ امام شافعی کا قول جو ہے وہ ناجائز تو نہیں ہے نا, حرام تو نہیں ہے نا, وہ جائز ہی ہے نا. نفس کی وجہ سے تو عوام ایسا کام کرتے ہیں, وہ تو عوام میں سے نہیں ہے, وہ تو ایسا شخص ہے جو کہ اپنے نفس کو فالو نہیں کرتا. تو اگر وہ اس طریقے سے تقلید سے اس نے تھوڑا سا ایکسپشن لی ہے تو یہ ایکسپشن نفس پرستی کی وجہ سے نہیں لی ہے بلکہ اس میں یقیناً کوئی دینی مصلحت ہوگی جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کو کون سا ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں, آپ کے پاس کون سا سارا علم ہے. ٹھیک ہے, تو یہی بات جو یعنی اصول یہی ہے, اور یہی اصول اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپلائی ہوتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اور جب اللہ کا نبی ہے تو آپ نے مان لیا کہ اللہ کا نبی ہیں, تو انہوں نے جو زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح اللہ کے حکم سے کیا ہے, اپنے نفس کے خاطر تو نہیں کیا نا. ٹھیک ہے, کیا مشورہ لے کر دوسرے امام کے اوپینین فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ مشورہ لے لیا پھر جو ہے مشورہ تو آپ کو کچھ اور دیا گیا تھا پھر آپ نے یعنی ان کے منع کرنے کے باوجود آپ نے دوسرے امام کو obviously that's not what you mean. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے تو آپ کو جو مشورہ دیا جا رہا ہے نا وہ فتوے کے درجے میں نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کا اور شیخ کا بالکل ایک پرائیویٹ پرسنل مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے مخصوص حالات کے مطابق آپ کو آپ کا شیخ کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ کو کہہ بھی رہے نا کہ ہاں بھی آپ ایسا کام کر لیں کیونکہ امام شافعی کے مسلک میں یہ جائز ہے, تو یہ آپ جو کر رہی ہوں گی یہ آپ اپنے نفس کی اطاعت میں نہیں کر رہی ہوں گی, یہ آپ اپنے شیخ کی اطاعت میں کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, اور شیخ آپ کو جو حکم کر رہا ہے کہ امام شافعی کے مسلک سے یہ لے لو تو شیخ آپ کو حرام کرنے کو تو نہیں کہہ رہا نا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کوئی حرام کام تو نہیں ہے کہ امام شافعی کے مسلک سے لے لیا, وہ تو ایک جائز کام ہے. تو آپ کو منع کیوں کیا جاتا تھا, کیونکہ اگر آپ خود سے لیں گی تو وہ نفس کی اطاعت میں ہوگا, لیکن ابھی آپ نفس کی اطاعت تو نہیں کر رہی, آپ تو شیخ کی اطاعت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو سارا مسئلہ جو ہے نا یہی ہے, نفس کی اطاعت میں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پہ کام کر رہے ہیں, اور شیخ کی جو اطاعت ہوتی ہے یہ مقصد آپ کا اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے نا, کیونکہ آپ شیخ کی اطاعت کر رہے ہیں. وہ کیا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے تو آپ کو آواز نہیں آتی, اللہ کی طرف سے تو کوئی لکھا ہوا آپ کے پاس جواب نہیں آتا نا, تو اس وجہ سے شیخ کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے, تو یہ نفس کی اطاعت نہیں کہلاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو تعلق ہوتا ہے نا, تو اس تعلق کو جو واقعی اختیار کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ شریعت کی باؤنڈریز کے اندر رہ کر کے استعمال کرتا ہے نا, حقیقت میں اس کی زندگی مشکل نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس کا یہ تعلق نہیں ہوتا اب وہ کیا کرے گا, اب وہ ایک کام کرنا چاہ رہا ہے جو کہ اس کے مسلک میں جائز نہیں ہے, لیکن اب وہ کبھی ادھر سے فتوی لے گا ادھر سے فتوی لے گا, ابھی بھی اس کا قلب جو ہے وہ غیر مطمئن رہے گا, پریشان رہے گا کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, اور شیطان جو ہے نا وہ خوب اس کے اوپر وسوسوں کے ذریعے سے حملہ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن جس نے شیخ کے ساتھ ایسا صحیح تعلق بنایا ہوا ہے اور شیخ پھر اس کو مشورہ دیتا ہے یا اس کے مشورے کو مان لیتا ہے, تو اس کے اوپر یہ شیطان کے وسوسے حملے ہی ختم ہو جاتے ہیں اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو اصلاحی تعلق والا سلسلہ ہے, حملے کیوں ختم ہو جاتے ہیں اصلاحی تعلق کی وجہ سے, شیخ نہ تو خدا ہوتا ہے نہ شیخ رسول ہوتا ہے نہ شیخ کو عالم العلم الغیب حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, نہ خدا ہے وہ نہ رسول ہے نہ اس کے پاس علم الغیب ہے. ٹھیک ہے, تو پھر زندگی آسان کیسے ہو جاتی ہے شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق کی وجہ سے, کیوں آسان ہو جاتی ہے, ذرا اس کا ایک لفظ کا جواب بتا دیں, زندگی آسان کیوں ہو جاتی ہے شیخ کے تعلق کی وجہ سے, شیخ کے ساتھ مشورے کر کے کام کرنے کی وجہ سے کیوں آسان ہو جاتی ہے, ایک لفظ میں جواب, کیونکہ اس کے بعد ایک لفظ کیا جواب ہوگا اس کا, نہیں آسان ہونا کا مطلب جو تھوڑی آسان, آسانی کس چیز میں لتانے رکھی ہے, سنت, سنت. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اور سنت ہی آسان راستہ ہے, خلاف سنت دین پہ عمل کرتے ہیں مصیبت بن جاتا ہے دین ہمارے لیے. بہرحال تو آگے چلنے کے آگے تان کا جواب ہے کہ ان پیغمبر کے لیے خدا تعالیٰ نے جو بات تکوینا نے تشن مقرر کر دی تھی اس میں نبی پر کوئی الزام اور تان کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں بھی یہی معمول کر رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں کہ ان کو جس عمل کی اجازت ہوتی ہے بے تکلف وہ اس کو کرتے رہے ہیں اور محل تان نہیں بنے, یعنی لوگ تانے کرتے تھے, محل تان نہیں بنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ان پر تانے نہیں کرتے تھے, تانے کرتے تھے لیکن ان تانوں کی پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ وہ اپنے شیخ کا حکم مان کے چل رہے تھے, ان کا شیخ اللہ ہوتا ہے, अल्लाह की बात मान करके चल रहे होते हैं। ऐसे ही ये नबी भी महल एतराज नहीं है कि लोग उनके ऊपर एतराज करें, यानी करना चाहिए नहीं उनके ऊपर एतराज लोगों को। और उन पैगंबरों के भी इस किस्म के जितने काम होते हैं इन सब के बारे में भी अल्लाह का हुक्म तजवीज किया हुआ पहले से होता है और इसी के मुवाफिक फिर उनको हुक्म होता है और वो अमल करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने अपने तकदीर में सारी चीजें जो है वो सेट करी हुई है कि इसको क्या क्या हुक्म करना है, तो वो हुक्म करते हैं अल्लाह ताला और वो नबी जो है उनको अमल करते थे। शायद आपके किस्से में इस मजमून को लाना और फिर अंबिया के तस्करे में उसको मुकर्रर लाना इस तरफ इशारा है कि ऐसे उमूर मिसल तमाम उमूर तकवीनिया के ऐसे मुतजम्मिन मुतजम्मिन हिकमत होते हैं। यानी तमाम उमूर तकवीनिया के जरिए के जैसे ये जो उमूर थे ना ये भी अल्लाह ताला की हिकमत के जामिन होते हैं कि पहले ही से इल्म इलाही में तजवीज़ हो चुके हैं, फिर नबी पर तान करना अल्लाह पर तान करना है। यानी जो लोग फिर नबी पर ताने करते हैं ना तो वो दरअसल नबी पर ताने नहीं कर रहे होते बल्कि अल्लाह पर ताने कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ही ने नबी से ये काम करवाया है। बखिलाफ उन उमूर के जिन पर खुद हक तआला मलामत फरमा दें, गो वो मुकद्दर होने की वजह से मुतजम्मिन हिकमत हो मगर महले महले मलामत होना दलील है इसके तजम्मुन मफासिद की। खैर ये थोड़ा सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन नबी अलैहि सलाम को भी अल्लाह ताला ने कभी कुछ चीजों के ऊपर थोड़ी सी तंबीह फरमाई कि भी आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे हो गया, और कुरान के अंदर उन तंबीहात को अल्लाह ताला ने मजकूर भी किया। ठीक है, तो वो जो तंबीह फरमाई ना तो वो भी अल्लाह ताला की तकदीर का ही हिस्सा है। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मामला किया, ठीक है, दो नबी ने फिर ऐसे मामला किया लेकिन फिर अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई। ठीक है, तो ये भी अल्लाह ताला की हिकमत ही का मुतजम्मिन है। अल्लाह ताला ने हिकमत ही की वजह से ऐसे मामला किया तो महले मलामत होना, यानी फिर उस नबी ने यानी नबी ने जो फेल किया जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह हुई, तो ये जो फेल था ना इसको कह रहे हैं कि इस फेल का महले मलामत होना, यानी मलामत जो अल्लाह ताला की तरफ से उस फेल के ऊपर हुई तो वो क्यों हुई, वो भी किसी मुफसिद चीज यानी यानी मफासिद को दूर करने के लिए, यानी वो तो मुतजम्मिन थी मफासिद की, तो ये मामला भी अल्लाह ताला की तरफ से इस हिकमत ही की वजह से हुआ कि कुछ मफासिद थे उनको दूर करना मकसूद था। जब ही अल्लाह ताला ने इस तरह का मामला किया कि नबी अलैहिस्सलाम से कोई इज्तिहादी गलती हो गई और फिर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर उनके उनको जो है वो मलामत फरमा दी। ठीक है, जैसे कि लिखा ना बखिलाफ उन उमूर के जिन पर खुद हक ताला मलामत फरमा दें, तो वो उमूर भी जो थे मुकद्दर थे। ठीक है, तो जो मुकद्दर थे अल्लाह ताला की तरफ से वो मुतजम्मिन हिकमत थे। ठीक है, यानी नबी ने नाउजुबिल्ला कोई गुनाह नहीं किया कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको कोई अजाब दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, लेकिन नबी से एक जो इज्तिहादी गलती हो गई। अब ये गलती जो हो गई, नबी तो अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता ना, कुछ भी नहीं करता नबी अपनी तरफ से, तो नबी से जो गलती हो गई तो ये गलती भी जो है वो अल्लाह ताला ही ने करवाई नबी से, क्योंकि नबी का ऐसा ही मामला है। ठीक है, नबी का ऐसा मामला नहीं है जो कि हमारे साथ हमारा जैसा मामला है। तो ये सारा का सारा जो है वो हिकमत की वजह से ही था अल्लाह ताला की, जैसे कि सूरह अबसा वतउल्ला के अंदर जो आपने पढ़ा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी एक खता हो गई थी और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर आयात उतारी। आगे एक मदह खास है उन पैगंबरों की ताकि आपको तसल्ली हो, यानी ये सब पैगंबर इन पैगंबरान पैगंबरान गुज़िश्ता ऐसे थे कि अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाया करते थे, अगर तबलीग कौली के मामूर हुए तो कौलन और अगर तबलीग फेली के मामूर हुए तो फेला, और इस बाब में अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। ठीक है, यानी नबियों का मामला ये होता है कि अल्लाह ताला तंबीह फरमाते भी है ना तो साथ साथ जो है ना फिर अल्लाह ताला फॉलो अप करते हैं उस तंबीह को किसी प्यार और मोहब्बत और नरमी वाली बात से। ठीक है ना, ये नबी के साथ महसूस होता है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये बात बहुत दफा कुरान में आई कि अल्लाह ताला ने जब ऐसी कोई तंबीहन बात फरमाई ना, ठीक है ना, कि ए नबी आपने जो है वो लिमा तुहर्रिमु माला मा अहदल्लाहु लकुम, आपने जो है वो क्या आपने हराम क्यों कर लिया उस चीज को, जैसे कि जिसको अल्लाह ताला ने आपके ऊपर हलाल किया था, जिसको अल्लाह ताला ने हलाल किया उसको आपने अपने ऊपर हराम क्यों कर लिया, ठीक है ना। तो उसको फॉलो अप फौरन किया कि वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला बहुत गफूर है और बहुत रहीम है, ठीक है। तो ये जो अल्लाह ताला की तंबीह नबियों के लिए होती है, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ना उनकी एनकरेजमेंट के लिए भी बात करते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला गैर नबी के साथ तंबीह फरमाते हैं ना, तो उसको एनकरेजमेंट के साथ फॉलो अप नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि गैर नबी जो है वो उनका दर्जा नीचा है इस वजह से। तो यहाँ पर भी क्योंकि अल्लाह ताला ने तंबियन कोई बात फरमाई, तो फिर साथ साथ जो है वो उसको यानी आप की तसल्ली के लिए भी जो है वो मामला फरमा दिया कि ये लोग जो थे वो अल्लाह के अहकामों को अहकाम को पहुंचाया करते थे। तो आप भी जो है वो इसी तरीके से, जब तक बस आपको भी जब तक मालूम नहीं था कि ये निकाह तबलीग फेली है, अंदेशा होना मुजायका नहीं है, लेकिन आपको जब ये बात मालूम हो गई तो आप भी अंदेशा ना कीजिए, जैसा कि मुक्तजा है शान रिसालत का। चुनाचे इसके इंकिशाफ के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदेशा नहीं किया, यानी दिल के अंदर वो जो एक फिक्र और एक परेशानी थी वो दिल से परेशानी भी निकल गई, अंदेशा निकल गया। और बावजूद है कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग रिसालत में किसी से खौफ नहीं हुआ, ना इसका एहतमाल था, फिर भी अम्बिया का किस्सा सुनाना ज्यादा तकवियत कल्ब के लिए है, ताकि कल्ब जो है वो और मजबूत हो जाए, इसलिए कि कल्ब की मजबूती जो है ना ये बढ़ती ही रहती है, पहले भी मजबूत था लेकिन और मजबूत हो जाए, तो कल्ब के अंदर ये गुंजाइश होती है कि अभी और मजबूत भी हो सके, अभी और भी मजबूत हो सके, ठीक है। जितना इंसान नेकी करता रहेगा, जिक्र करता रहेगा और इस्तकामत इख्तियार करता रहेगा, उतना कल्ब मजबूत होता रहेगा। ये नहीं कि जी अब तो मजबूत हो गया, अब आगे तो गुंजाइश ही नहीं है मजबूत होने की, नहीं, ऐसा नहीं है, कल्ब के अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा तसल्ली के लिए फरमाते हैं कि अल्लाह आमाल का हिसाब लेने के लिए काफी है, फिर किसी से काहे का डर है, नीज आप पर तान करने वालों को भी सजा देगा, आप तान से महमूम ना होइए। क्योंकि ये एक ऐसा मामला था कि जिसमें फिर नबी अलैहि सलाम को मुआशरती तौर पर ना बहुत यानी तान व तशनी का जो है वो सामना करना पड़ा था, और ये मामला ऐसा था कि नबी अलैहिस्सलाम खुद भी चूंकि उस मुआशरे में जिसको बेटा कह दिया गया, मुंह बोला बेटा, तो वो बेटा ही बन जाता था, विरासत में हकदार भी बन जाता था, और उसकी बीवी जो है वो अपनी सगी बहू की तरह हो जाती थी, तो और नबी अलैहिस्सलाम खुद भी इस चीज को ऐसे ही समझते थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तब्दीली लानी थी जो कि नबी अलैहिस्सलाम की अपनी सोच में भी एक बात ठीक थी, तो उसको भी जो है ना आप अल्लाह ताला ने बिल्कुल निगेट करना था, तो इस वजह से ये एक बहुत ही टफ मामला था नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है। और जाहिर है दूसरे मुआशरे के जो लोग थे उनके ऊपर भी बड़ा टफ था ये बात देखना, ठीक है, कि भी ऐसे कैसे हो रहा है। बहरहाल, अच्छा, उसूल नहव की इबारत किसी ने तैयार की हुई है, या जिसने तैयार की है वो क्लास में है, इबारत कम अज कम पढ़ लें। है इबारत वाली खातून, किसकी बारी थी? जी हेलो, है आप लोग के नहीं? अच्छा, नाबिया की बारी थी, वो तो आज शुरू से ही नहीं है खास में। अच्छा, कल तो उनका एक्चुअली मैसेज भी आया था कि वो अपने वाला के घर हैं, तो वो बात कर सकते हैं, तो आज पता नहीं, आज भी शायद वाला है। तो चले, खैर, टाइम तो तकरीबन खत्म वैसे भी हो गया है, तो इबारत वैसे जो थी पढ़ने की, पेज नंबर 85 पर थी ना, पेज नंबर 85 के ऊपर, तो उसका मैं अभी तर्जुमा बस पढ़ लेता हूँ, बगैर इबारत के तर्जुमा तशरीह वगैरह देख लेते हैं। तो
اس میں فرماتے ہیں کیونکہ یہ مشترک اور مؤول کی بحث چل رہی ہے، اور اس کا مختصر خلاصہ کیا تھا کہ مشترک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لباس کے معنی مانند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ جو ہیں وہ لباس کی مانند ہوتے ہیں، اور جو معنی ہوتا ہے وہ انسان کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح انسان کو لباس پہنایا جاتا ہے، اور جو لباس ایک دفعہ انسان نے پہن لیا، اب وہ لباس اسی وقت کوئی اور انسان تو نہیں پہن سکتا، ٹھیک ہے نا، یعنی دو انسان ایک وقت میں ایک ہی لباس تو نہیں پہن سکتے نا، ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ انسان اس لباس کو اتار دے تب کوئی اور انسان اس لباس کو پہن لے، لیکن ایک ہی وقت میں تو نہیں پہن سکتا نا. تو اسی طریقے سے فرمایا تھا کہ جو معنی ہوتا ہے، کوئی ایک معنی ہے، تو اس معنی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی ایک سے زیادہ لفظ جو ہیں وہ اس معنی کا لباس بن سکیں ایک ہی وقت میں، ٹھیک ہے. تو ایک معنی جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی لفظ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور عموم مشترک کیا، عموم مشترک کا مطلب کیا تھا کہ لفظ مشترک سے ایک ہی وقت میں کئی معنی مراد ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک لفظ ایسا ہو کہ جس کا کہ ایک ہی وقت میں آپ کئی معنی مراد لیں، ٹھیک ہے. تو اس کو عموم مشترک کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو مشترک کی بحث تھی. تو عموم مشترک، بلکہ ایک اور بات اس میں اہم کیا تھی کہ عموم مشترک تو جائز نہیں ہے، لیکن عموم مجاز جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی مجازی طور پر ایک لفظ کے آپ ایک سے زیادہ معنی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے یسجدو کا لفظ ہے، تو یسجدو یعنی اس آیت کے اندر الم تر ان اللہ یسجدو لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. تو لفظ ہے یسجدو. اب یہ لفظ یسجدو جو ہے وہ من فی الارض کے لیے استعمال ہوا، تو اس کا مطلب ہوا کہ سجدہ کیا انہوں نے. اور شمس و قمر اور نجوم اور جبال اور شجر اور دواب کے لیے جب استعمال ہوا، تو یہ مراد، تو اس کا مطلب جو ہے وہ عاجزی اختیار کری، ٹھیک ہے. تو لفظ ایک ہی ہے یسجدو کا لفظ، اور اس کے جو ہے وہ آپ دو معنی لے رہے ہیں، لیکن یہ دو معنی جو لے رہے ہیں نا، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی طرف پوائنٹ کرتے ہیں اصل میں. تو اس کو جو ہے وہ عموم مجاز کہتے ہیں، عموم مشترک نہیں کہیں گے اس کو، اس کو عموم مجاز کہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب آج جو شروع ہو رہی ہے وہ مؤول کی ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ جب مشترک کا کوئی معنی راجح ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ترجیح دے دیں کسی معنی کو کہ ہاں جی اس لفظ کا یہی معنی ہے، تو جب کوئی معنی راجح ہو جائے غالب رائے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، رائے کے غالب ہونے کی وجہ سے، تو وہ مؤول بن جاتا ہے، یعنی اب وہ لفظ جو ہے مشترک نہیں رہتا بلکہ اس کو آپ مؤول کہتے ہیں. اور مؤول کا حکم اس کے اوپر عمل کا واجب ہونا ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، یعنی دیر از اے پاسبلٹی آف مسٹیک، لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے، بٹ عمل اس کے اوپر واجب ہی ہوگا، اس کے باوجود عمل کرنا اس کے اوپر واجب ہی ہوگا. تو اس مؤول کی مثال احکام شرعیہ میں وہ ہے جو ہم نے کہا کہ جب کسی آدمی نے بے میں سمن کو مطلق چھوڑا، تو وہ سمن، یعنی سمن کہتے ہیں کہ قیمت کو، تو جب کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا اور اس کے اندر سمن جو قیمت طے ہوئی، تو اس سمن کو مطلق چھوڑ دیا اس شہر کے سب سے زیادہ رائج ہونے والے سپوں، تو وہ سمن اس شہر کے سب سے زیادہ رائج ہونے والے سکوں کے مطابق ہوگا، اور سمن کا شہر کے مروجہ سکوں کے مطابق ہونا بطور تاویل کے ہے،
ठीक है, यानी तावील की जाएगी कि समनका शहर के मरवजा सिक्कों के मुताबिक होना, ये तावील के जरिए से ही ये फैसला किया जाएगा। और अगर वो सिक्के मालियत में मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हों तो बै फासिद हो जाएगी, इस दलील की वजह से जिसको हम जिक्र कर चुके हैं। ये दलील क्या है कि उमूम मुश्तरक जो है वो जायज नहीं होता, इस वजह से बै फासिद फासिद हो जाएगी। अच्छा, अब जाहिर है तर्जुमे से तो खाली बात समझ में नहीं आती, तो तशरीह वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी। तो फरमाते हैं तशरीह में कि इस इबारत में मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने मुअव्वल की तारीफ, उसका हुक्म और उसकी एक मिसाल बयान फरमाई है। तो फरमाते हैं कि मुश्तरक के मानी में से कोई मानी गालिब राय से राजह हो जाए, यानी प्रेफर्ड हो जाए, तो वो मुश्तरक मुअव्वल बन जाता है। वो गालिब राय खबर वाहिद से हासिल हो, यानी जो 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 ओपिनियन है ना जिसकी वजह से आपने मुश्तरक को मुअव्वल बनाया है, तो ये ओपिनियन कहाँ से आया? या तो किसी खबर वाहिद से आया, या कयास से आया, या दूसरे कराइन से आया। ठीक है, यानी दूसरे आपने फैक्टर्स देखे होंगे तो उनकी वजह से भी ये गालिब राय बन सकती है आपके जहन में। मानी की इस तरजीह की वजह से वो मुश्तरक मुअव्वल बन जाता है। ठीक है, तो तरजीह के रीजंस क्या हो सकते हैं? कोई खबर वाहिद हो सकती है, कोई कयास हो सकता है, या कोई और कराइन हो सकते हैं। मुअव्वल का हुक्म, इस पर अमल करना वाजिब है गलती के एहतमाल के साथ। गलती का एहतमाल क्यों? इसलिए इसलिए होता है गलती का एहतमाल के जो मुज्तहिद होता है वो मुश्तरक के एक मानी को तरजीह किसी दलील के साथ अपने इज्तिहाद से देगा, और इज्तिहाद में गलती का एहतमाल होता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुज्तहिदु यख्तिउ व युसीबु, खता यख्तिउ यख्तिउ व युसीबु। ठीक है, यानी मुज्तहिद खता भी करता है और सवाब भी करता है। सवाब सौद से, सा वाला सवाब होता है रिवॉर्ड, और सौद वाला सवाब होता है सही। ठीक है, सही होना। ठीक है, तो मुज्तहिद खता भी कर लेता है और सही बात भी कर लेता है। ये मुज्तहिद ये फिका के कॉन्टेक्स में है। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट मशवरे पर भी अप्लाई होता है। ये जो शेख होता है ना इंसान का, ठीक है, ये शेख जो है वो उस इंसान के लिए मुज्तहिद होता है। ठीक है ना, यानी मुरीद के लिए उसका शेख जो है वो मुज्तहिद होता है। तो शेख क्या करता है? वो शेख जो है वो उसको मशवरा दे रहा होता है। वो मशवरा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है ना, हम मशवरा क्यों करते हैं? हम जो है वो सिर्फ सही सुनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन शेख को क्या पता? शेख कोई इल्मुल गैब वाला तो नहीं होता, उसको फ्यूचर का इल्म तो नहीं होता। ठीक है, जिसको फ्यूचर का पता हो कि भाई आपने फलाने कारोबार में इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें आपको नफा होगा, ये तो फ्यूचर का हाल है ना। तो शेख को फ्यूचर का हाल तो नहीं पता होता, तो अगर वो आपको मशवरा दे रहा है कि हाँ जी आपको इस कारोबार की बजाय, यानी चावलों के कारोबार की बजाय आपको गंदम के कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसने आपको मशवरा दे दिया, तो उसने जो ये मशवरा दिया है तो उसने चंद कराइन को देखा होगा, उसने जो है वो आपके अहवाल को देखा होगा कि भाई आपका जो मामला है वो गंदम के कारोबार से जरा ज्यादा मुनासबत रखता है, आपकी फैमिली में पहले भी लोगों ने गंदम का कारोबार किया है। ठीक है ना, तो आपको भी चाहिए कि गंदम का कारोबार करें, उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करें। तो ये कराइन को देख करके शेख ने मशवरा दे दिया। अब हुआ क्या? आपने गंदम के कारोबार में इन्वेस्टमेंट करी, आगे से कोई कोई आफत आ गई या कोई और मसला हो गया, आपको वहां पर लॉस हो गया। तो इस मशवरे को क्या कहेंगे? इस मशवरे को कहेंगे खता। ठीक है ना, ये खता है। लेकिन ये खता जो है इस खता से आपको दुनियावी नुकसान हुआ है, दीनी नुकसान नहीं हुआ। कैसे दीनी नुकसान नहीं हुआ? दुनियावी नुकसान तो हो गया। ठीक है ना, आफत आ गई या कोई और कीड़े पड़ गए गंदम के अंदर, तो वो आपको दुनियावी नुकसान हो गया। दीनी नुकसान कैसे नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि आपने मशवरे की सुन्नत पर अमल किया, और सुन्नत पर अमल करने से आपको सवाब मिल गया, जन्नत में आपका रिवॉर्ड मिल गया, तय हो गया आपके जन्नत में रिवॉर्ड। ठीक है ना, अच्छा ये तो एक दीनी नुकसान है जो कि आसानी से समझ में आ जाता है, इसी वजह से मैंने आपसे पूछा भी नहीं कि बताएं कौन सा वाला दीनी फायदा हुआ। सॉरी, यानी ये दीनी फायदा तो आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा भी नहीं कि बताएं जी कौन सा दीनी फायदा हुआ। लेकिन एक और भी दीनी फायदा है कि मशवरा किया, आगे से दुनियावी नुकसान हो गया लेकिन दीनी फायदा हो गया। दो दीनी फायदे हुए, एक दीनी फायदा कि मशवरे की सुन्नत पर अमल का सवाब मिल गया, दूसरा दीनी फायदा क्या हुआ आपको जी? क्या बात करिए आप, ये तो पहला दीनी फायदा है आखरत का, सवाब मिलने का मतलब क्या होता है आखरत का फायदा। ओके, मैं दूसरा फायदा पूछ रहा पहले भी आपने नहीं बात के लोग पहले जुम्मन साहब ने कहा था किसकी अदात? दूसरा फायदा जरा सही से जवाब दें, ये अतात का लफ्ज जो है वो उसे पता नहीं लगता आप क्या कहना चाह रही हैं। जी, दूसरा दीनी फायदा क्या हुआ? शेर के अतात का फायदा? नहीं, इसको भी शेख की अतात का फायदा जो है ना, ये भी सवाब सवाब ही कहलाएगा। ओके, और सवाब वाला बात वाली बात हम पहले कर चुके हैं, पहले फायदे में क्या आपको सवाब मिल गया, मशवरा किया, मशवरा करके मशवरे को आपने, मशवरे के बाद तो फिर अतात का ही मामला होता है ना, तो मशवरा लीड्स टू अतात, तो पहले फायदे में ये बात भी कवर हो चुकी है। अब मैं दूसरे फायदे की बात कर रहा हूं जो कि डिफरेंट है, ठीक है, दूसरा फायदा क्या हो रहा है आपको ये बताएं। अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात हुई है इसी टॉपिक पर, आप ही के सवाल के जवाब में, जो ऊपर आपने सवाल किया था ना, याद है क्या सवाल किया था, उसका क्या जवाब मिला था? तो दूसरा फायदा क्या हुआ? इसके बाद क्लास खत्म भी करनी है, जरा जल्दी कोशिश करें जवाब देने की। दूसरा फायदा क्या हुआ? जी, क्या मशवरा लेकर दूसरे इमाम के ओपिनियन फॉलो कर सकते हैं? या तो आपको मेरा जवाब ही समझ में नहीं आया था, क्या जवाब दिया था उस सवाल में भाई? शेख से मशवरा किया, फिर मशवरे के बाद तो अतात करनी चाहिए, तो इससे तो आपको सवाब मिल गया। दूसरा फायदा क्या है? आप किसकी अतात से बच गए? आप किसकी अतात से, किसके रास्ते से बच गए? ये भी तो फायदा है ना जी, नफ्स की अतात से बच गए ना, और नफ्स की अतात से बचना ये नुकसानदेह, यानी इतना फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि नफ्स की अतात जो आपने करी वो दर हकीकत शैतान की अतात होती है, इसलिए कि नफ्स को कौन पीछे से फीड कर रहा होता है, कौन पीछे से जो है वो नफ्स को ये आइडियाज दे रहा होता है, शैतान आइडियाज दे रहा होता है। तो नफ्स की अतात से बचना इतने फायदे वाली चीज क्यों है? क्योंकि दरअसल आप शैतान की अतात से बच रहे हैं, ठीक है, अगरचे कि आपको दुनियावी नुकसान हो गया, लेकिन नफ्स, और जब भी नफ्स और शैतान का लफ्ज साथ बोला जाता है, लेकिन आप नफ्स और शैतान की अतात से तो बच गए ना, ठीक है ना, सवाब भी मिल गया मशवरा करने का, मशवरे पर अमल करने का सवाब भी मिल गया, और नफ्स और शैतान की अतात से बच भी गए, ठीक है। तो ये होता है दोहरा फायदा मशवरे का, ये नहीं होता कि जी मुझे इस इन्वेस्टमेंट में नफा होगा। ओके, उसी तरीके से जैसे शेख के मशवरे से हमेशा आपको दुनियावी फायदा नहीं होता ना, तो शेख का मशवरा हमेशा दुनियावी एतबार से सही नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल जैसे मुज्तहिद का जो इज्तिहाद होता है वो हमेशा सही नहीं होता, उसमें खता भी होती है, उसके अंदर सवाब भी होता है, ठीक है। तो खैर, यहां तक पढ़ के हम मजीद आगे जो है अगली क्लास में इंशाल्लाह चलेंगे।
اگر ہم نادیہ صاحبہ آ گئیں تو ان سے کہیں گے کہ ترجمہ بھی کر لیں عبارت کا، ورنہ تشریح آگے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.